उदय ने अभिमन्यु की बात का जवाब नहीं दिया और उसने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर पूछा, क्या बात करनी है आपको हमसे, बताइए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अभिमन्यु उदय की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, हम यहाँ पर आपको सच बताने के लिए आए हैं। एक्चुअली हम इप्सिता से पूरी बात कर चुके हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ भी किया उसका रीजन आप दोनों को भी पता होना चाहिए। इतना बोलकर अभिमन्यु नंदिनी और उदय की तरफ देखने लगा। उदय ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बताइए। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर उसे पूरी बात बताना शुरू करता है और जैसे ही उसने अपनी पूरी बात उदय और नंदिनी से कही, उन दोनों की ही आंखें बिल्कुल शॉक्ड हो गई थीं। और तभी नंदिनी ने कहा, सीरियसली, आपके चाचा चाची ऐसे हैं? हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन ऐसा है तो आप लोग अभी भी उनके साथ क्यों रहते हैं? जब वो लोग एक बार आप दोनों को नुकसान पहुंचाने की या जान लेने की कोशिश कर सकते हैं तो बार बार भी करेंगे। अभिमन्यु ने नंदिनी की ये बात सुनकर थोड़ा मायूस होते हुए कहा, सच बताएं तो पहले तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब हमें ये बात पता चली तो हम किसी भी हाल में कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमारे लिए इप्सिता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम उनसे बहुत प्यार करने लगे हैं और हम हमेशा हमेशा के लिए उन्हें अपना बनाना चाहते हैं। और चाचा जी को हमने जेल भिजवाया था लेकिन वो बेल पर वापस आ गए हैं, लेकिन अब हम लोगों का फाइनल इंतज़ाम भी करेंगे। उदय उसकी ये बात सुनकर अभिमन्यु को घूरते हुए देखकर बोला, अभिमन्यु, हम अगर आपकी बात पर यकीन भी कर लें तो भी हमारे मन में कुछ सवाल तो हैं। अगर आपको पता चल गया था कि इप्सिता की जान खतरे में है तो एक बार आपको हमें ये बात बतानी चाहिए थी। आपको क्या लगता है, हम अपनी बहन से प्यार नहीं करते और हम इप्सिता के लिए कुछ भी कर सकते थे, तो फिर आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई? अभिमन्यु ने उदय के नज़दीक आकर उसे समझाते हुए कहा, नहीं उदय, आप हमें गलत समझ रहे हैं, हम आपसे ये बात छुपाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये सब कुछ एक दो दिनों में इतनी हड़बड़ी में हुआ कि हमें खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उस टाइम हमें जो ठीक लगा हमने वो किया। इसके बाद भी अगर आप हमारी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और अगर आप हमें कोई सज़ा देना चाहते हैं तो हमें वो सज़ा मंजूर होगी। अभिमन्यु इतना बोलकर चुप हो गया और उदय ने एक बार नंदिनी की तरफ पलटकर देखा और दोबारा फिर इप्सिता की तरफ। इप्सिता उदय से कुछ भी बोलने से डर रही थी, लेकिन फिर भी इप्सिता आगे बढ़ी और उसने उदय का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई, अभिमन्यु हमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने सब कुछ हमारी जान बचाने के लिए किया। सोचिए, उन्होंने अपने घर की इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। अभिमन्यु इप्सिता को अपना साइड लेते देखकर खुश हुआ और तभी अभिमन्यु ने उदय को भरोसा दिलाते हुए कहा, आप हमारे ऊपर यकीन करिए उदय, हम इप्सिता को बहुत खुश रखेंगे और उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। हम अभी इसी वक्त आपसे आपकी बहन का हाथ मांगते हैं, हम इप्सिता से शादी करना चाहते हैं, क्या आप हमें उनसे शादी करने की परमिशन देंगे? नंदिनी अभिमन्यु की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और उसने उदय के कंधे पर आकर हल्के से अपना हाथ रखा और तभी उदय ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कैसे यकीन करें हम आपकी बात पर, हमें नहीं हो रहा है आप पर यकीन। आप बताइए, अगर आप फिर से हमारी बहन को छोड़कर चले गए तो हम क्या करेंगे? अभिमन्यु ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, हम इप्सिता को आप कहीं छोड़कर नहीं जाने हैं, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे, हम उनके हर एक डिसीजन में उनका साथ देंगे। इप्सिता अभिमन्यु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर खुश हो रही थी, लेकिन उसके दिल में अभी एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उदय अभिमन्यु की बात का क्या जवाब देने वाला है। और तभी उदय ने कुछ सोचते हुए कहा, अभिमन्यु, आप जानते हैं ना, इप्सिता एक बहुत ही फेमस मॉडल बन गई है, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपसे शादी करने के बाद उसका करियर रुक जाएगा? अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखते हुए कहा, हम सारी बातें जानते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे, इप्सिता शादी के बाद भी मॉडलिंग करेंगी, हम इस बात का वादा करते हैं, मासा से खुद हम इस बारे में बात करेंगे। अभिमन्यु की ये बात सुनकर उदय उसकी तरफ बिल्कुल सीरियस निगाहों से देख रहा था और उसे देखकर ये बात समझ में आ रही थी कि उदय कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव हो चुका है इप्सिता को लेकर और अभिमन्यु इप्सिता से कितना प्यार करने लगा है कि वो उसके खातिर अपनी मासा से भी बात करने के लिए तैयार है। उदय कुछ सोच ही रहा था कि तभी नंदिनी उसके पास आकर धीमी आवाज में बोली, क्या सोच रहे हैं आप उदय? उदय ने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखे हुए कहा, क्या आप सच में इप्सिता के लिए कुछ भी करेंगे? उसके लिए आप राज परिवार के नियमों को भी बदल सकते हैं? अभिमन्यु उदय की बात सुनकर धीमी आवाज में बोला, हाँ, कुछ भी, हम इप्सिता की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ये नियम कुछ नहीं है उनके आगे, और वैसे भी ये बेकार के नियम हम वैसे भी बदलने वाले थे। अभिमन्यु ने पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कही और उसका कॉन्फिडेंट देखकर उदय, नंदिनी और इप्सिता तीनों ही बिल्कुल हैरान हो गए। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में पल्लली और नरेंद्र काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अभी तक अभिनव के लिए किसी भी राजघराने की कोई लड़की राजी नहीं हुई थी और पल्लवी और नरेंद्र अपने कमरे में परेशान बैठे थे। और तभी पल्लवी ने कहा, हमें तो समझ नहीं आ रहा, कोई भी हमारे बेटे से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर अभिनव की शादी नहीं हुई तब तो फिर वो महल का राजा भी नहीं बन पाएगा। नरेंद्र ने पल्लवी को घूरते हुए देखकर कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसे राजा तो बनना ही है। और रही बात लड़की की, तो अगर हमें कोई राजघराने की लड़की नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, किसी दूसरी लड़की का इंतजाम करेंगे। अभिमन्यु जो इस टाइम उनके कमरे में आया और उसने जैसे ही उन दोनों की ये बातें सुनी, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, लेकिन तभी कुछ सोचकर उसके चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कुराहट आ गई और वो बिना कुछ बोले ही रूम से बाहर चला गया। वहीं पल्लवी और नरेंद्र अभी भी कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि कोई तो ऐसी लड़की उन्हें मिल जाए जो अभिनव का हाथ थाम सके, और वो दोनों जल्दबाजी में इधर उधर फोन करने लगे। वहीं दूसरी तरफ उदय अपनी शर्त रख चुका था और अभिमन्यु उसकी बात मानने के लिए तैयार भी हो गया। इप्सिता और नंदिनी काफी ज्यादा खुश हो गई थी और अभिमन्यु ने कहा, तो फिर ठीक है, हम तीनों 2 दिन बाद वापस उदयपुर चलेंगे। तब तक आप लोग भी अपने काम से छुट्टी ले लीजिए और हमें भी अपना थोड़ा सा काम है जिसे फिनिश कर लेते हैं। उदय अभिमन्यु की बात मान गया था और वो इप्सिता के साथ उसकी शादी करवाने के लिए भी रेडी था और वो सब एक साथ ही 2 दिन बाद उदयपुर जाने वाले थे। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी, वो जल्दी से इप्सिता के पास आ गई और उसने उसे साइड हग किया और अभिमन्यु ने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब हम भी चलते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु वहां से जा ही रहा था कि उदय उसके पीछे पीछे आया और उसने अभिमन्यु को गले लगाते हुए कहा, हमें भी माफ कर दीजिए अभिमन्यु, हमने आपको इतना गलत समझा, लेकिन हम बस इतना चाहते हैं कि अगर कभी भी ऐसी कोई भी बात आपको पता चलती है तो आप उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करें। सब कुछ आपको अकेले सॉल्व करने, मेन हीरो बनने की जरूरत नहीं है, खासकर अगर कोई बात इप्सिता से रिलेटेड है तो। अभिमन्यु ने उदय से बात सुनकर तुरंत हां में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम नहीं छुपाएंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु आखिर वहां से बाहर चला गया और इप्सिता उसे जाते हुए ही देख रही थी, तो नंदिनी ने उसका ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा, रहने दो, चले गए तुम्हारे कुंवर सा, और ये बताओ अब क्या सोचा है। इप्सिता उसकी बात सुनकर बोली, अभी हम ऑफिस चलेंगे और मैं बॉस से 2 महीने की छुट्टी ले लूंगी।
नंदिनी ने जैसे ही इप्सिता के मुँह से ये बात सुनी, वो उसे चिढ़ाते हुए बोली, वाह क्या बात है, पहले से ही 2 महीने की छुट्टी। वैसे हाँ, एक तरह से देखा जाए तो सही ही है, शादी के बाद थोड़े दिन तो तुम्हें भी जीजू के साथ रहना ही है ना। वैसे भी जिस तरह से तुम अभी से जीजू को देख रही थी, लगता नहीं उनके बिना रह पाओगी अब तुम यहाँ पर। इतना बोलकर नंदिनी मुस्कुराने लगी और इप्सिता ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, चुप करो तुम, भाई यहाँ पर खड़े हैं, जो मन में आता है वो बोल देती हो। नंदिनी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी और तभी उदय उन दोनों के पास आकर बोला, वैसे हमें लगता है अगर हमें 2 दिन बाद यहाँ से निकलना है तो हम तीनों को ही अपने सारे काम खत्म करने होंगे और अपने अपने बॉस से परमिशन भी लेनी होगी, क्योंकि अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल होगा, इसलिए आप दोनों भी आज ही अपने बॉस से बात कर लीजिएगा। इप्सिता ने भी उदय की बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाया और वहीं उनके साथ खड़ी नंदिनी ने कहा, अरे अथर्व, बॉस इप्सिता की छुट्टी के लिए तो मान जाएंगे, क्योंकि वैसे भी वो उनकी फेवरेट है और सबसे पॉपुलर मॉडल भी, लेकिन मुझे पता नहीं छुट्टी मिलेगी या नहीं। इतना बोलते हुए नंदिनी थोड़ी सी उदास लगने लगी, तभी इप्सिता ने उसकी तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए अभी बॉस से बात कर लेंगे। इप्सिता की ये बात सुनते ही नंदिनी ने खुश होकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, यार तो बड़ी अच्छी है। इतना बोलते ही वो नंदिनी के गले लग गई और इप्सिता ने उदय की तरफ देखा, जो कि उन दोनों की तरफ ही देख रहा था, और ये बात नोटिस करते ही इप्सिता ने नंदिनी को खुद से दूर करते हुए कहा, नंदिनी क्या करती हो तुम, भाई को अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा दूर रहा करो हमसे, अब तुम्हारी शादी हो गई है। इप्सिता ने भले ही मजाक में ये बात कही, लेकिन उसकी बात सुनकर नंदिनी और उदय एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दोनों ही झेप गए। उन दोनों को ऐसे देखकर इप्सिता ने हंसते हुए कहा, इतना ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है आप दोनों को, हम बस मजाक कर रहे थे और चलो अब चलते हैं। इसके बाद वो तीनों ही एक साथ घर से निकले, क्योंकि अपने अपने वर्किंग प्लेस पर जाकर आज उन लोगों को सारे काम खत्म करने थे और छुट्टी के लिए अप्लाई भी करना था, उसके बाद निकलने की तैयारी भी उन सबको करनी थी।